ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्षै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्री चितन्मयतया तर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतुष। श्रीमद्भागवत प्रारंभ के पहले गुरु वंदना का नियम है, इसलिए सुत गोस्वामी जी अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी, जन्म हुआ और जात संस्कार कार्य भी नहीं हुआ, न स्नान कराया गया, न कुछ हुआ, न कोई भी कुछ संस्कार नहीं हुए और घर से निकल पड़े और भागे और पीछे से उनके पिताजी हा पुत्र कह करके पीछे से दौड़ रहे हैं, जो समस्त जीवों के हृदय में रमण करते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं और सबके कल्याण के लिए सब समय चिंता करते हैं, वो जगत गुरु सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सुत गोस्वामी जी का है। मैं सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को भी प्रणाम करने के पहले, कृष्ण को भी प्रणाम करने से पहले, मैं अपने नित्य लीला ओम प्रविष्ट अष्टोत्तर सश्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को उनके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। ये हमारे केशव जी गुरु जी हमारे जी हैं। ये कौन है? ये जगत में सर्वत्र जिन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया है, भक्ति का कुछ थोड़ा सा जो दिख रहा है जगत में आज, वो जो भक्ति वेदांत स्वामी जी जो प्रभुपाद के नाम से आजकल विख्यात हैं, उनको ये संन्यास देने वाले हैं जो हमारे गुरु जी। हम लोग अपने गुरु जी के पहले सन्यासी शिष्य हैं। हमारा नाम भी भक्ति वेदांत नारायण लोग कहते हैं। हमारे करीब करीब 5-7 वर्ष बाद 1959 स्वामी जी मथुरा में आए। उस समय एक पैसा एक कौड़ी भी उनके साथ में नहीं था। हमारे गुरु जी के परम मित्र थे, हमारे गुरु जी सन्यासी थे और ये गृहस्थ भक्त थे। प्रभुपाद ने 1922 या 23 में इनको हरिनाम दिया था और जगत में प्रचार करने के लिए कहा था स्वामी जी को, भक्ति वेदांत अभय चरण जी को। इसके बाद में कुछ परिस्थितियां आईं ऐसी जिसमें जिस काम में हाथ डालते बस वही काम असफल हो जाता, धीरे धीरे पथ के भिखारी हो गए। ये हमसे कह रहे थे जब मथुरा में आए 1954-55 में, तो हमसे बोले जैसे मैं डर रहा था, जो भगवान का जो भजन करता है कृष्ण का आत्यंतिक रूप से उसको कृष्ण पथ का अधिकारी कर देते हैं और फिर उसको जगत का गुरु बना देते हैं। तो मैं डर रहा था कि भगवान का भजन करने के लिए हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया और मैं कहीं पद का भिखारी ना हो जाऊं। बंगाल के मिलन के वो मैनेजर थे, बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत योग्य आदमी थे, अनुभवी थे, रिसोर्ट के स्कॉलर थे, किंतु कुछ दिनों के बाद ही मैं हरिनाम दीक्षा लेने के बाद ही मैं वो छूट गया का। इलाहाबाद में आए, मैंने वहां पर भी एक फॉर्म किया, वहां पर भी औषधें बनने लगी, किंतु वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद में दुकान की, वो भी फेल हो गया। घर वालों ने देखा जैसे ये सब निष्ठल्ले हो गए, कुछ काम नहीं, घर से कहा जैसे अब आपको घर में नहीं आना है। उनकी स्त्री और लड़कों ने भी कह दिया अब घर में मत आना। बिना पैसे कौड़ी के मथुरा में आए। हमने कहा कि आप इतने योग्य व्यक्ति और आप अभी तक ऐसे ही हैं, जल्दी से संन्यास लेकर के विश्व में प्रचार कीजिए, अपने गुरु का आप में इतनी सामर्थ है। कहा जी यही तो बात है, यही तो मैं डर रहा था और यही चीज हमारे ऊपर में आई। और इतने हमारे गुरु जी आए, गुरु जी से भी मैंने कहा जिसे इनसे कहिए ये संन्यास लेकर के विश्व में प्रचार करें। बस गुरु जी की ये बड़ी बात मानते थे। हमारे गुरु जी 1916 में हरिनाम दीक्षा ली प्रभुपाद जी से, इसलिए इनके बड़े भाई होने के नाते और सन्यासी होने के नाते इनकी बात मान गए और मथुरा में ही इन्होंने संन्यास दिया हमारे गुरु जी ने इनको। और तब ये प्रचार किए, मैं उसमें पुरोहित्य किया, उनको संन्यास कैसे पहना लिया जाता है, कैसे कपड़े बांधे जाते हैं, कैसे किया किया जाता है, ये सब बातें उनको हमने उसमें बतलाई। हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु जी हैं ये। किंतु तभी से इनकी मैं सेवा करना आरम्भ किया। वहीं पर उन्होंने भागवत का ट्रांसलेशन आरम्भ किया जो 3 खंडों में छपा। सबसे पहले उन्होंने सबसे पहला वो हमको दिया। इसके बाद में फिर वो राधा दामोदर में आए वृंदावन में, फिर वहां से विश्व में प्रचार करना आरंभ किया। उन्होंने हमको कम से कम तो 250-300 पत्र दिए, जो जो कम होता था वो हमको देते थे। इसके बाद में अंत में हमको बुलाया, जब यहाँ से प्रचार करके जब पहली बार लौटे तो मैं ही केवल एक व्यक्ति था जो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में गया, उनके साथ में रह करके उनको रसोई बना करके खिला देता, चपाती बनाता था वो बेलते और मैं चपाती बना करके ठाकुर जी को भोग दे करके खाता और उनको भी खिलाता। तब से आज से करीब करीब 52 वर्षों से हमारा उनका संपर्क है। आज का नहीं, उस समय इस्कॉन का जन्म ही नहीं हुआ था, इस्कॉन में सन्यासियों की तो बात किया। और अंत में हमको बुलाकर, संक्षेप में बतला रहा हूं, अंत में हमको बुलाया और बुला करके कहा जिस दिन जाने वाले हैं, जगत को छोड़ने वाले हैं, उस दिन हमको बुलाया। बोले जो देखिए आपसे हमारा एक निवेदन है। हमारे हाथों को अपने हाथों में लेकर के रोने लगे, हमको अपने बिस्तरे पर बैठाना चाहा। मैं उनके चरणों को प्रणाम करके उनके सिरहाने एक कुर्सी सब लोग लाया, उस पर मैं बैठ गया। बात होने लगी, बहुत दिल खोल करके बात कही। हमने कुछ प्रचार में कुछ गलतियां की होंगी, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और हमारे गुरु भाइयों से कह देना जैसे वो क्षमा करेंगे हमें यदि कुछ बात हो गई। और अपने हाथों से आप मेरी समाधि देंगे, दूसरा कोई उसमें हाथ न लगाए। समाधि जानते हैं ना अंत में होती है। मैंने कहा जी ठीक है, आप जो कहेंगे आपकी मैं सेवा करूंगा और हमारा विरह उत्सव जो होगा आप उसका लीड करेंगे, सब कराएंगे। हमारा नगर संकीर्तन होगा, उसमें रहेंगे। जिसको जिसको जो पैसा लेना देना होगा आप सब लोगों को उचित समझ करके दिलवाएंगे। और सबसे अंतिम हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे जो अभी जिनको अभी प्रचार से ले आया हूँ पश्चात देशों से, उनको मैं पूरी शिक्षा नहीं दे सका, आप उनको शिक्षा भी देंगे, आप उनको सहायता करेंगे अपने। मैंने कहा जी जरूर, मरते समय तक मैं आपके आदेशों को पालन करूंगा, आप मेरे गुरु हैं। मैंने ये सब काम किया, ये सब उसका मैं तो रिकॉर्ड रखना नहीं चाहता, मैं जानता हूं। किंतु उस समय में जो लोगों ने कैसेट लिए और क्या वीडियो लिया वो सब अभी जैसे के तैसे है। जीवन भर मैंने उनकी सेवा की। अभी भी उनकी जहां जाता हूं उनकी महिमा का व्याख्यान करता हूं। वो आज नहीं होते तो इतने थोड़े समय में ही विश्व में भारत की संस्कृति का ये जो भक्ति का प्रचार है, भगवान का नाम का प्रचार नहीं होता। ये कोई भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा होता है। इसलिए उन्होंने जगत में थोड़े दिनों में ही आए और कितने ग्रंथ लिखे, अनुवाद किया भागवत का, चैतन्य चरितामृत का, ऑथेंटिक बुक्स का, गीता का, जो आज जगत में सर्वत्र लोग पढ़ करके इस लाइन में आते। नहीं तो किसी को पता ही नहीं था जैसे ये गीता नाम का क्या चीज है, भगवान का नाम संकीर्तन क्या चीज है, भागवत नाम की चीज क्या है। भारत में तो था किंतु भारत के बाहर में ये सब चीजें नहीं थी। इसलिए इतने थोड़े समय में विश्व के करीब करीब 60-70 या 80-85 जगहों में सेंटर हुआ, भक्ति का केंद्र स्थापित हुआ। तरह तरह की वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत सी चीजें इन्होंने किया। आज मैं अपने गुरु के साथ साथ में इनको भी प्रणाम करके भागवत की कथा का हम आरंभ कर रहे हैं, जो उनका उद्देश्य था। प्रचार का दो उद्देश्य होता है, एक होता है आउटवर्ल्डी जो विचार है, शरीर संबंधी, समाज संबंधी, देश संबंधी एक प्रकार का विचार होता है, और एक होता है जिसके लिए कृष्ण जगत में उतरे, जिस काम के लिए चैतन्य महाप्रभु जी इस जगत में आए, जिस काम के लिए मध्वाचार्य, रामानुज, शंकर इत्यादि सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, भगवान के भक्त लोग आए हैं, उसी के लिए आचार्य लोग जगत में आते हैं। हम भूल जाते हैं भगवान को, जो हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं भूल जाते हैं। ई ड्रिंक एंड मी बेरी, बस इसमें व्यस्त हो जाते हैं, समय नहीं मिलता है, केवल खाने पीने मौज में, धन संग्रह में, और मृत्यु को और जल्दी जल्दी बुलाने के कामों में हम फंस जाते हैं। जिससे हमारा कल्याण होगा वो तो भूल जाते हैं, और जिससे हमारा विनाश होगा उधर में हम चलने लगते हैं। इसलिए कृष्ण कभी कभी भगवान भी आते हैं, कभी कृष्ण ही राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण ही वामन इत्यादि कितने रूपों में आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं। इस प्रकार से युग की धर्म की प्रतिष्ठा करके जाते हैं। इसलिए सनत सनंदन सनत कुमार जी ने, वो कहीं भारत में आ रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा, भारत तुम बड़े दुखी देखते हो, खिन्न लग रहे हो, तुम तो भक्ति का प्रचार विश्व में करते हो, तुम्हें तो कोई चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, और तुम जगत का कल्याण करने वाले हो, और फिर भी तुम बड़े दुखी देख रहे हो, मुख सूख रहा है, बड़े खिन्न देख रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, हां कुछ ऐसी बात है, मैं पृथ्वी तल में गया, मैं 14 लोकों में जहां इच्छा होती है वहां चला जाता हूं, विश्वेश्वर के बैकुंठ में भगवान नारायण के पास में रहता हूं, और वहां से चारों लोकों में घूमता रहता। मैं घूमते 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 भारतवर्ष में गया, वहां हरिद्वार में गया, वहीं से मैं ऋषिकेश में गया, बद्रीनारायण गया, फिर वहां से दक्षिण में केरल में वहां पर गया, श्वेत बांध रामेश्वर की तरफ में गया, जगन्नाथपुरी में गया, द्वारकापुरी में गया, सब जगहों में घूमते 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 हमको ये ऐसा लगा कि पृथ्वी से धर्म का सार न जाने कहां चला गया। लोगों में पवित्रता नहीं, लोगों में सम दम तितिक्षा नहीं, लोगों में सहिष्णुता नहीं, लोगों में तपस्या का बल नहीं, लोगों में दान करने की जो प्रवृत्ति थी अब नहीं रही, पहले लोग हाथ ऐसे पसारने वाले नहीं मिलते थे, ऐसे करने वाले मिलते थे, और ऐसा करने वाला कोई नहीं मिलता, यदि है भी तो स्वार्थ के लिए। केवल हमारे भारत के लोग भी हाथ पसारने के लिए कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, कभी फ्रांस, कभी जापान जा रहे हैं। बड़े बड़े जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनते हैं वो अब केवल भिखारी ही नजर आते हैं, ऐसे देने वाले नहीं। पहले ऐसा नहीं था, पहले देने वाले ही होते, निस्वार्थ भाव दिया और चुपचाप, किसी से भी इस हाथ से दिया तो इस हाथ को पता नहीं लगे, ऐसे था सब। अब तो वो दान दक्षिणा परस्पर प्रीति ये सब कहीं नहीं मैंने देखा। अधिक बजाने वाले को ही साधु संत कहा जा रहा है, पाखंडी लोग भर गए हैं। भागवत की कथाएं हो रही हैं, किंतु उसको बेचा जा रहा है। बेचना समझते हैं कथाएं? देखो भागवत की कथा होगी, सब लोग कुछ न कुछ प्रणामी देंगे, पहले ये तय हो जाता है, और पाठक थाले की तरफ में देखता है कि कितने पैसे प्रणामी पड़े। यदि हुआ तो खूब उल्लास होता है, और नहीं तो नहीं। इस तरह से कथाओं का साथ चला गया, तपस्या का साथ चला गया। ब्राह्मण लोग वेद भी आजकल पढ़ाते हैं तो उसके लिए पैसे ले लेते हैं, तो वेद पाठ का भी साथ चला गया। पैसा ही सबसे महत्व, पैसा ही मानव भगवान हो गया। इसलिए सारा संसार बड़ा दुखी है। मैं घूमते 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 बहुत दुखी होकर के वृंदावन में आया। वहां एक अजीब तमाशा देखा। क्या देखा? वहां देखा एक युवती स्त्री है, बड़ी सुंदरी है, किंतु बड़ी दुखी है। और जहां वो बैठी है कुंज के पास में, दो वृद्ध जिनके केश पक गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, वो दोनों तरफ में लेटे हुए हैं, उनको होश नहीं है और वृद्ध हैं। और बहुत सी सुंदरी स्त्रियां वो चारों तरफ से खड़ी होकर के उनको चामर पंखे उनको डुला रही हैं। किनको? जो स्त्री है तरुणी उसको डुला रहे हैं। मैं जब पहुंचा तो मुझको कुछ विचित्र सा लगा, मैं वहां पर पहुंच गया। जब निकट गया तो स्त्री खड़ी होकर के हाथ जोड़ दी, महात्मा जी आप बड़ी पधारे, आज हमको हृदय में बड़ा कुछ सुख समाल हो रहा, आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरी इच्छा थी कि आपसे आपके दर्शन हो जाए, आज हमारा सौभाग्य है कि आपसे दर्शन हो गया, आपको कुछ हम शांति। नारद जी ने पूछा जी आप कौन हैं, कौन और इतनी दुखी कौन है, और ये दोनों आदमी बूढ़े पड़े हुए हैं, ये कौन है? मेरा नाम भक्ति है, मैं सत्युग से द्वापर तक बड़ी सुखी थी, अब कलयुग आने वाला है, मैं बड़ी दुखी हूं। मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, केरल इत्यादि के पास में। मैं वहां से कुछ बड़ी हुई तो कर्नाटक में आई, यू नो कर्नाटक, कर्नाटका वहां पर, तो वहां पर कुछ बड़ी हुई। वहां से महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र माने बंबई इत्यादि, पुणे बंबई इत्यादि। वहां पर जब आई तो कहीं कहीं मैं बढ़ी, किंतु अब मेरा बढ़ना रुक गया। जो ही मैं महाराष्ट्र से आगे बढ़ी, यहां गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई, हमारे बेटे भी बूढ़े हो गए, इनके दांत टूट गए, सफेद बाल हो गए और बड़े दुखी हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई। अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुखी हुई। दुखी होकर के मैं सोचा कि वृंदावन चलूं, तो वृंदावन में आई, यहां आते ही यहां पर पैर धरते ही मैं तो जवान हो गई और तरुणी बन गई, बड़ी सुंदरी बन गई, मुझे बड़ी कुछ शांति मिली। किंतु हमारे ये दो बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य, ये हमारे बेटे हैं, किंतु ये बूढ़े के बूढ़े बने रहे, कुछ संचार तो हुआ प्राणों का, किंतु बोलते नहीं है। बात क्या है, भक्ति देवी दक्षिण में बड़े बड़े रामानुज, मध्वाचार्य, उसके पहले भी यमुनाचार्य, अलवर इत्यादि भक्त हो गए हैं मध्वाचार्य। यहाँ पर साधु संतों का जन्म होता है, जहाँ पर भक्ति का प्रचार होता है वहीं भक्ति का जन्म होता है। बिना साधु संघ के भक्ति नहीं होगी। भक्ति स्तु भगवत संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते कुंभी पूर्व जन्म सकृत। भक्ति का कैसे जन्म होता है, कोटि कोटि जन्म में कुछ सुकृति होगी। सुकृति कैसे होगी, यदि कोई सच्चा संत है उसकी आपने किसी प्रकार से पानी दे दिया, उनको आदर पूर्वक बैठाया, उनको प्रसाद के लिए कुछ दे दिया, ठाकुर जी को सिर नवा दिया, तुलसी जी की परिक्रमा हो गई, या किसी वृंदावन इत्यादि धाम में चले गए, किसी प्रकार से भागवत के कथा में बैठ गए, दो एक कथाएं कान में चली गई, इसको कहते हैं सुकृति। और इस सुकृति के बाद में जब पुष्ट हो जाती है कुछ जन्मों तक, तो हठात वैष्णवों का साधुओं का संग हो जाता है। निर्मल चरित्र, निर्मल चरित्र साधु कौन है, वह है जिसका सर्वस्व कुछ नष्ट होने पर भी उसको कोई चिंता नहीं, संसार का समस्त वैभव मिलने पर भी उनको कोई सुखी नहीं, सुख नहीं, उनको संसार की कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ, भगवान के चिंता में मग्न रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी को लंगोटी की भी जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे महापुरुष भारतवर्ष में हमारे हुए हैं। भगवान की कथाओं को जगत में दे करके जगत को पवित्र कर देते हैं, जैसे नारद जी हैं, व्यास जी हैं, इसके बाद की परंपरा है, महाप्रभु हुए, रूप सनातन हुए, और सब उसकी कड़ी में, ये स्वामी जी भी अब तक हैं, हमारे गुरु जी भी उसके कड़ी में हैं। तो इन लोगों को संसार की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्या चीज की जरूरत है, हम हैं कौन आखिर, हु आम आई, मैं आत्मतत्व, मैं भगवान का नित्य दास हूं, भगवान को भूल करके हमारी ये दशा है। ये महात्मा लोग भगवान कृष्ण इन जीवों पर दया करके कभी कभी अवतार लेते हैं, कभी भक्तों को भेजते हैं संसार में, इस चीज का प्रचार करो कि हमको भूल करके संसार में ये दुख पा रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, जीवन में भी कोई सुखी और शांति नहीं है, बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के हम भारत से इधर में आते हैं और यहाँ आकर के कुछ दोनों के बाद में हम अनुभव करते हैं कि क्या सुख हुआ, मृत्यु तो आई ही, बुढ़ापा आया ही, और रोग भय तो रहे ही, और प्रॉब्लम हुई यहाँ पर भी आने के बाद में, डाइवोर्शन इत्यादि, परस्पर स्त्रियों पुरुषों का वो जो प्रेम था वो प्रेम समाप्त हो जाता है, विशेष करके अर्थ के द्वारा ये सभी चीजें समस्याएं आ जाती हैं, उसमें अभिमान आ जाता है। इसलिए ये बतला रही हैं कि मैं चारों तरफ में दुखी थी, अब बतलाइए हमारे लड़के पड़े हुए, हमको क्या करना चाहिए, हमारे लड़के कैसे दुरुस्त होंगे, ठीक होंगे, और मुझको कब सुख प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा ये देखो, भक्त जहां होते हैं वहां भक्ति का जन्म होता है, और वहां से आप कर्नाटक में आई तो वहां पर भी बहुत से भक्त लोग, इसलिए वृद्धि को, जहां भक्त नहीं रहेंगे भक्ति शांत हो जाएगी, कौन हरि कथा, इसलिए भक्ति समाप्त हो जाए। जब वहां से आए महाराष्ट्र में, बंबई इत्यादि में, वहां पर धन की अधिकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़े थोड़े लोग आदर करते हैं और कुछ लोग आदर नहीं करते, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी किंतु आगे नहीं बढ़ी। अब गुजरात में गई, वहां धन की बड़े लोग धन आते हैं, भक्ति की तरफ मैं नहीं देखती, इसलिए वहां पर हमारे लड़के भी, ज्ञान बैराग्य भी बूढ़े हो गए और मैं भी बूढ़ी, मैं नारद जी कह रहे तुम बूढ़ी हो गई, और वृंदावन में भक्ति का आदर है, तुम तो तरुणी बन गई किंतु तुम्हारे लड़के तरुण नहीं बन सके, वहां पर ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता, वो हरिद्वार में कुछ और कुछ काशी में। इसलिए अब आपके लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके बच्चों को मैं जीवित ठीक करूंगा और आप भी सुखी हो, घर घर में भागवत की कथा हो और आपका आदर हो, ऐसा मैं काम करूंगा। ये कह करके मैं चला, मैं यहां आया हूं और आप लोग बड़ी कृपा की जो आप हमसे मिल गए। अब बतलाइए हमको क्या करना है, कैसे भक्ति को हम ठीक करेंगे और हमारे ज्ञान बैराग कैसे होंगे। जो भक्ति करेगा ज्ञान बैराग्य अपने आप आता है, इसलिए उनको पुत्र कहा गया है। भक्ति नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा, बैराग्य भी नहीं होगा। भक्ति के बिना जो ज्ञान होता है वो बेकार का होता है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। और भक्ति के बिना जो वैराग्य होता है वो दिखाने के लिए होता है। जैसे आजकल बड़े बड़े महात्मा लोग बड़े बड़े वैराग्य करने वाले कहलाते हैं और उनके घरों में जाएंगे तो हम समझते हैं कि बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े धनी का, राष्ट्रपति का महल भी वहां पर फेल हो जाएगा, इतना वैभव वहां है। इसलिए शुद्ध भक्ति नहीं रहती, इसलिए ये उन्होंने बतलाया ये देखो एक बात करो, तुम सब कुछ जानने वाले हो नारद, तुम जगत के गुरु हो, तुम सब भी जानते हो, तभी हमारे पास में आए हो। तुम्हें बतलाता हूं श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भक्ति का इतना सुंदर विचार है, जिसे भक्ति होने से अपने आप ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा। बिना भक्ति का जो वैराग्य होता है वो दिखलाने के लिए दो दिन का होता है, और भक्ति होने पर जो वैराग्य होता है सचमुच में भक्ति के लाभ होने से सब कुछ उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण काम बन जाता है। जिस समय में ये श्रीमद् भागवत पहली बार आरंभ हुआ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कहने के लिए तैयार थे, उस समय देवलोक से इंद्र की अगुवानी में सब देवता लोग पधारे, हाथ में अमृत का कलश था। सुखदेव गोस्वामी को कहा, महाराज आप एक बात कीजिए, हम लोगों के पास में ये कलश में अमृत है और आपके पास में भागवत है, आप कृपा करके ये अमृत का कलश लेकर के परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, वो सांप के काटने से भी नहीं मरेगा, वो अजर अमर हो जाए, और ये भागवत की कथा हमें दे दीजिए। तो वो हंसने लगे, तुम लोग भागवत के सुनने के अधिकारी नहीं हो। अमृत पान करने से कुछ दिनों के लिए आदमी तो बच जाता है, किंतु उसमें अभिमान, जैसे इंद्र को अभिमान होता है, भगवान को भी भगवान नहीं माना, उनके ऊपर में भी वर्षा और वज्र चलाए, उनको भी नहीं माना, कृष्ण को नहीं माना, देवता लोग का भी ऐसा कभी कभी हो जाता है। इसलिए वहां पर दुख कष्ट भी है, इंद्र को श्राप भी लगता है, ऐसे काम करते हैं, इसलिए वे लोग अमृत के अधिकारी केवल हैं, भागवत के अधिकारी नहीं है। इससे बढ़कर के एक और अमृत है, वो मोक्ष अमृत कहलाता है। इस मोक्ष अमृत से भी प्रेम का अमृत जो है वो बहुत ऊंचा है। उस प्रेम के अमृत का ये भंडार श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण रूप है, तमाल वर्णम सुहितावतारम, अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूप। भागवत क्या है, इनके 12 अध्याय जो स्कंद हैं, कृष्ण के 12 अंग हैं। इन 12 अंगों में उनका हृदय कौन है, दशम स्कंद, और दशम स्कंद में हृदय में भी पंच जो प्राण है उसके बिना हम बच नहीं सकते, वो रास पंच अध्यायी है। तो कृष्ण का पूर्ण स्वरूप, कृष्ण भी जितने दयालु नहीं है उससे भी अपार संसार समुद्र से तो बड़े दयालु है। कृष्ण को दर्शन करने के लिए बड़ी बड़ी योग तपस्या और भक्ति चाहिए, भागवत सबके सामने है, सबके लिए उपलब्ध है। ऐसे ये श्रीमद् भागवत पुल किसको कहते हैं, समुद्र सेतु, सेतु किसको कहते हैं, सेतु दो अलग अलग भागों को मिलाने वाले जल से जो दो भाग हो गया है उनको मिलाने के लिए सेतु चाहिए, जैसे कि सेतु था सेत बांध रामेश्वर लंका और भारत को मिलाने के लिए। यहां पर भी सेतुएं होंगे नदी के इधर उधर। एक दो भाग क्या है, एक ये जड़ जगत जड़ ब्रह्मांड और दूसरी तरफ में क्या है, दूसरी तरफ में गोलोक वृंदावन है। बीच में क्या है, बिरजा नदी है, उसको पार नहीं कर सकते, ये पार करके उधर में जाएंगे कारण समुद्र। कारण समुद्र माने क्या, हम क्यों इस जगत में आए, इसका कारण है बारी। वहां पर सत्य रज तम तीनों बराबर हैं, वहां पर प्रकृति का कोई कार्य नहीं है, वहीं से हम निकल करके इधर में आए हैं। तो उस बैकुंठ जगत को और इस जगत को मिलने के लिए, इस जगत से उस जगत में जाने के लिए ये क्या है, सेतु स्वरूप ये श्रीमद् भागवत हैं।